न बोला जा सकता है एक मिनट में, और अन्य कांड की चर्चा तो करेंगे रात को अगली बैठक में, संभवतः ये समाप्त भी हो जाएगा। इस समय भक्त जी महाराज की चर्चा जो रात को छोड़ी थी उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने की इजाजत दीजिएगा। भक्त जी महाराज ने शरणागति का मार्ग अपनाया है, अति कठिन, कहना सुनना बहुत आसान इसे, लेकिन इस पर चलना अति दुष्कर। भक्त जी महाराज ने ये मार्ग अपनाया है, समर्पण का मार्ग। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई साधन नहीं, मैं निस्साधन हूं, दुस्साधन हूं, ऐसे शब्द भक्त अपने लिए प्रयोग करता है। पर शरणागति की महिमा भक्त जी महाराज बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अन्य मार्गों पर तो देवियों सज्जनों व्यक्ति चलेगा तो तब जाके वहां पहुंचेगा, इस मार्ग की महिमा यह है, अभी चलना व्यक्ति शुरू ही होता है तो वह पहुंच जाता है, उसे अपना गंतव्य आरंभ में ही मिल जाता है। भीष्म जी महाराज जिस वक्त लंका से चलते हैं तो उनके मन में क्या विचार आ रहे, मैं पहुंचूंगा प्रभु राम के पास, उनको पता लगेगा मैं अपना कुटुंब राज्य इत्यादि सब कुछ त्याग के, अपने भाई सब कुछ त्याग के उनकी शरण में आ गया हूं, तो वह पहुंचते ही मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, हाथ रखेंगे तब रखेंगे, पर भविष्य को तो अभी अनुभव हो रहा है कि वह मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं। ये शरणागति की महिमा है, आरंभ में ही व्यक्ति जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच जाता है शरणागति की यात्रा के दौरान। वे मुझे अपने कपड़े पहनाएंगे, अपनी जूठन खाने को देंगे, पता नहीं राम देंगे भी कि नहीं देंगे, लेकिन भीष्म जी महाराज तो आनंदित हो रहे हैं, मुदित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, ये बातें सोच के ये शरणागति की महिमा है। भरत जी महाराज इसी मार्ग पर चल रहे हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम से होते हुए चले सीधा चित्रकूट पहुंचते हैं, जाके प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने अपना जो वस्त्र एक पहना हुआ था दुपट्टा सा जो होता है उसे उतार दिया, धनुष बाण रख दिया और उसको हृदय से लगा लिया। भरत को तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, इसके साथ तो मेरा हृदय का हृदय जो है वह मिलना चाहिए, इसका हृदय और मेरा हृदय, मैं कुछ बीच में पहन के रखूंगा तो दोनों हृदयों में कोई दूरी आ जाएगी, ये दूरी नहीं रहनी चाहिए। भगवान अपना वह दुपट्टा सा उतार के दूर फेंकते हैं और भट्ट को गले लगाते हैं, दोनों का हृदय एक हो जाता है। यही है महिमा शरणागति की, ये अभिन्नता देती है, ये एकाकार कर देती है, दोनों के हृदयों को मिला के देरी दूरी सब मिटा के एक कर देती है, एकाकार हो जाता है व्यक्ति शरणागति में। मैं हो गया, मैं आपका हो गया। ध्यान दें भक्तजनों, कहीं ये आप समझ बैठो, शरणागति हमें निष्क्रिय बना देती है, हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ वह ऐसा नहीं करने देता। अब मत सोचो कि चूंकि हम उसके हो गए हैं अब वो हाथ पर हाथ धर के बैठने देगा हमें, नहीं। एक नदी की उदाहरण लीजिएगा, एक नदी सागर में प्रवेश कर जाती है, बड़ी शांति बेचारी, बड़े सुख से सबको जल पिलाती हुई, खेतों को जल देती हुई, घर खेत बसाती हुई बड़े आराम से जाती है और समुद्र में जाके प्रवेश कर जाती है, मानो वह शरणागत हो गई है समुद्र के। अब जैसे समुद्र ठाठे मारता है वैसे उस नदी को भी ठाठे मारनी पड़ेगी, वह उछल कूद अपने साथ ही उस नदी को भी करवाता है, वह इस प्रकार से नहीं रखता क्योंकि अब आप मेरे शरणागत हो गए हो इसलिए मैं अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप चुप आराम से बैठो, ऐसा नहीं है। अपने जैसा ही वह उछल कूद करवाता है। भरत जी महाराज जाके अपनी मां की निंदा करते हैं और मैं हूं कारण महाराज, उस जननी के कोख से मैं जन्मा, ये सारा अनर्थ मेरे कारण हुआ। एक धर्मात्मा शब्द बोल रहे हैं, एक शरणागत शब्द बोल रहा है, भरत जी महाराज को संत महात्मा कहते हैं कि ये राम की छाया है। भरत की महिमा इससे बढ़ के और क्या हो सकती है, इससे बढ़ के भरत की महिमा नहीं गाई जा सकती। ये राम की छाया है, मानो जो राम की सोच है वही इनकी सोच है। छाया दिखाई तो देती है, वह हिलती जुलती भी है, आदमी के साथ सब कुछ करके कराती भी दिखाई देती है, पर वास्तव में वह करती कराती कुछ नहीं है। जो जिसकी छाया है वह करता है, वह उसी के अनुसार चलती है। मानो भरत जी महाराज यदि निंदा कर रहे हैं तो भगवान भी निंदा करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान मां के कई की निंदा बिल्कुल नहीं करते और साफ साफ कहते हैं, भरत के सामने जितने लोग और भी आए हुए हैं उन सब के सामने कहते हैं, जो मेरी मध्यमा मां की निंदा करेगा वह जड़ है। मानो उस व्यक्ति ने कभी संतों महात्माओं की सेवा नहीं करी, उसने कभी सत्संगति नहीं करी, मानो उसे तत्व का बोध ही नहीं है। ये भरत को कह रहे हैं, दो भाई एक जैसे लेकिन उनकी विचारधारा इस वक्त बड़ी भिन्न है, कौन है सच्चा, भरत या राम? भरत कहता है, महाराज आप प्रशंसा करने वाले एक और मेरा समर्थन देने वाले ये सारी जनता। भगवान को लगता है इस वक्त भरत का खंडन करना कोई आसान नहीं, इसलिए अपने श्रीमुख से भरत की प्रशंसा करने आरंभ करते हैं। भरत, जो तुझे अनर्थकारी कहेगा, जो तुझे इस प्रकार का कहेगा, उसका लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। तेरा नाम जो लेगा उसका लोक परलोक सुधर जाएगा, इस प्रकार की प्रशंसा करते हैं। श्रोतागण जितने भी हैं, अयोध्या निवासी आए हुए अति प्रसन्न होते हैं। भगवान मौका ढूंढते हैं और कहते हैं, यदि मां गई ना होती तो ऐसा भरत कहां से आ गया होता। मां कई की निंदा मत करो, वह निंदनीय नहीं है, वह वंदनीय है। ऐसा कल आपने देखा भरद्वाज ऋषि ने भी कहा, वह दोषी नहीं है, दोष है तो मां सरस्वती का दोष है, जो मां कई की जीवा पर बैठ के तो जिसने सब कुछ करवाया। तत्वता तो यही है, भगवान ही है ना वो सब कुछ करवाने वाला, और कौन है? चाहे वह कई से करवा रहा है, चाहे आप भरत से करवा रहा है, चाहे वह किसी से करवाता है, करवाने वाला तो वही है सब कुछ, और होता वही है जो वह चाहता है। मत सोचिएगा अपनी इच्छा के साथ कुछ होता है, अपनी इच्छा जब उसकी इच्छा के साथ मिल जाती है तो लगता है कि अपनी इच्छा पूर्ण हो रही है, होती इच्छा उसी की पूर्ण है। और जब उसकी इच्छा नहीं होती तो आप लाख सिर पटकते रहो, वह कुछ नहीं होने देता, तब कुछ नहीं होता। भरत जी महाराज, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा होती है। वाल्मीकि रामायण में राजा जनक एवं उनकी पत्नी का आगमन नहीं है, रामचरितमानस में तो उनका आगमन है, वे आते हैं निर्णय करवाने के लिए, करने के लिए, जैसा मर्जी आप समझिएगा। आखिर जीत भरत की ही होती है, देखने में तो यही लगता है राम जीत के, वह अपने प्रण का पालन कर रहे हैं। नहीं, भक्तजनों जीत हमेशा प्रेम की ही होती है, और प्रेम में यदि कोई हार भी जाता है तो वह भी उसकी जीत ही होती है, वह उसकी हार नहीं होती। आप जैसी मर्जी कहो, जीत तो भरत जी महाराज की ही हुई है। ठीक है महाराज, मैं राज्यभिषेक के लिए सामग्री आपके लिए लेके आया हुआ था। राज्यभिषेक के समय अयोध्या में परंपरा इस प्रकार की है, राजा को खड़ाऊं पादुका पहनाई जाती है, तो भरत जी महाराज यह सारी सामग्री जो उनके लिए तैयार करी हुई थी उसमें खड़ाऊं भी हैं। ठीक है महाराज, अब इन खड़ाऊं पर अपने चरण धर दीजिएगा, मैं ये खड़ाऊं लेके वापस जाऊंगा। भगवान ही तो है ना मेरी माताओं सज्जनों, मान जाओ इस बात को, वही हैं सब कुछ करवाने वाले। वे अति हर्षित हुए हैं भरत की बात सुन के, एक क्षण नहीं उन्होंने सोचने में लगाया। जैसे ही भरत जी महाराज ने नीचे पादुका रखी है, भगवान ने अपने चरण पादुका पर रख दिए, डाल दिए। भरत जी महाराज ने भगवान के श्री चरणों से पादुका निकाल ली है और अपने सिर पर, ये पादुका कोई सिर पर रखने वाली चीज तो नहीं है, लेकिन भरत जी महाराज ने अपने सिर पर उन्हें धारण कर लिया है। भगवान की पूछते हैं, भरत ये चरण पादुका लेके जा रहे हो, ये क्या है? महाराज, संसार की दृष्टि में तो ये चरण पादुका है, मेरी दृष्टि में तो ये सीताराम। मैं चरण पादुका नहीं ले जा रहा, मैं तो सीताराम को अपने सिर पर उठा के ले जा रहा हूं। मेरे शिरोधार्य है, सदा मेरे सिर पर रहते हैं मेरे स्वामी एवं स्वामिनी, मैं उन दोनों को अपने साथ ले जा रहा हूं। किसी ने व्यंग कर दिया, यदि आपको ये पता है कि ये सीताराम को ले जा रहे हैं, प्रभु को कहता है कोई व्यक्ति, महाराज ऐसा क्यों नहीं कर लेते, आप दोनों चले जाओ और पादुका यहां रह जाएं, दोनों ही सीताराम, वे भी सीताराम, वे भी सीताराम। भगवान राम कहते हैं, भाई आप ठीक कहते हो, लेकिन मैं क्या करूं, काश जैसी दृष्टि भरत की है वैसी दृष्टि सबकी होती। ये दृष्टि भरत की ही है जो जड़ में भी चेतन को देख सकता है, हमें तो चेतन में राम दिखाई नहीं देता, तो जड़ में कहां से दिखाई देगा। जो आप कहते हो मैं कर लेता, यदि आपकी दृष्टि भी भरत जैसी होती। भरत जी महाराज पादुका को लेके अयोध्या लौट आते हैं, स्वयं जाके नंदीग्राम में निवास करते हैं। पादुका ही सब कुछ करती है, कोई भेंट आती है तो पादुका पर चढ़ा दी जाती है, कोई आदेश जारी होता है तो पादुका द्वारा आदेश जारी किया जाता है। मानो भट्ट जी महाराज भगवान को ये कह के चलते हैं, महाराज आपकी भूमि का भार, आपके राज्य का भार मैं 14 वर्ष तक ढोऊंगा। शब्दों पर ध्यान दो, भरत जी महाराज कितने स्पष्ट हैं। आप जैसे ही 14 वर्ष पूरे हुए, यदि आप ना आए तो आप जानते हो महाराज मैं क्या करूंगा। माताओं सज्जनों, एक थोड़ी सी बात और स्पष्ट करूं, भरत जी महाराज की भूमिका जैसे लक्ष्मण जी महाराज की भूमिका रामायण में गुरु की है, आचार्य की है, वे राम को भी उपदेश देते, भरत जी महाराज की भूमिका श्री रामायण जी में एक वैद्य की भूमिका है, एक डॉक्टर की भूमिका है। भगवान राम मां कैकेयी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, क्यों, वे उन्हें मां मानते हैं। भरत जी महाराज उतनी ही उनकी निंदा करते हैं, उतने ही कटु शब्द उनके प्रति बोलते हैं, क्यों, वे एक वैद्य होने के नाते एक रोगी को देख रहे हैं। मेरी मां इस वक्त रोगी है, क्या रोग लगा है इसे, ममता का रोग लगा हुआ है। अध्यात्म ममता को खुजली से कंपेयर करता है, ये मानस रोग जो है अध्यात्म उनको, उनकी तुलना जो है किसी की खुजली के साथ करता है, किसी की वात के साथ, किसी की पित्त के साथ, इत्यादि इत्यादि, किसी की कफ के साथ, इसकी तुलना खुजली के साथ की जाती है। आप जानते हो खुजली वहां होती है जहां जगह गर्म होती है और गीली होती है। भरत जी महाराज इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग जो हैं खुजली का उपचार जब बताते हैं तो वह कहते हैं, भाई जितना इस जगह को खुश्क रखोगे, शुष्क रखोगे, उतनी जल्दी फायदा होगा। और खुजली की ये भी है, जितनी करो उतनी अधिक करने को मन करता है। खुजली करने से खुजली कम नहीं होती और करने को मन करता है। ममता का भी बिल्कुल ऐसा ही स्वभाव है, वह भी बढ़ती जाती है, वह कभी कम नहीं होती, जितनी मर्जी उसको बढ़ा लो। भरत जी महाराज इस तथ्य को जानते हैं, इसलिए कहते हैं मैं इस संबंध को गीला नहीं रखूंगा, इस संबंध को शुष्क करने की आवश्यकता है, तभी तो मेरी मां की खुजली जो है वह ठीक होगी। कहते हैं जिंदगी भर भरत जी महाराज ने कैकेयी को फिर कभी मां नहीं कहा। मां कहूंगा महाराज, प्रभु राम की आज्ञा का भी उल्लंघन करते हैं, मेरे कहने से एक बार मां कहो। कहता है महाराज, आप जो मर्जी कहो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मैं कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। इसी मां के कारण तो अनर्थ हुआ है, इसी मां पुत्र के संबंध, इसी ममता के कारण पहले अनर्थ हुआ है। अब मैं एक बार फिर इन्हें मां कह दूंगा तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। क्षमा करें प्रभु, मैं ये आपकी बात नहीं मान सकता। रोगी को दवाई कड़वी दी जाती है या मीठी, इसके पीछे भाव तो यही रहता है ना, रोगी का रोग जो है वह दूर हो जाए। आप सच मानो भरत जी महाराज के हृदय में मां कैकेयी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। हमारी दोष दृष्टि, पर दोष दृष्टि में और भरत की पर दोष दृष्टि में यही अंतर है। हम जब भी किसी के दोष देखते हैं तो हम वैर बुद्धि से, द्वेष बुद्धि से देखते हैं, और भरत जी महाराज जो देश दोष देख रहे हैं वह इस बुद्धि से नहीं देख रहे, वह किस बुद्धि से देख रहे हैं। दशरथ जब मर गए हैं, दोनों माताएं, यूं कहिएगा तीनों माताएं तैयार हो गई हैं सती होने के लिए, अपने आप को दाह करने के लिए, सती होने अपने आप को अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो गई। सबसे अधिक प्रसन्नता तो भरत को होनी चाहिए थी कि ये कैकेयी मर रही है, इसको मरना ही चाहिए, लेकिन नहीं। जहां मां कौशल्या को रोका है उनके पांव पकड़े हैं, सुमित्रा को रोका है उनके पांव पकड़े हैं, मां कैकेयी के भी पांव पकड़े हैं। नहीं, जो पाप तूने किया है उसका प्रायश्चित अग्नि में जलने से नहीं, उसका प्रायश्चित पश्चाताप की अग्नि में जलने से होगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। कोटि कोटि प्रणाम भक्षण नक्षिर वंदना।